व्यवस्था विवरण अध्याय 18। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वो ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो। व्यवस्था विवरण 18:4। सत्य तो ये है कि परमेश्वर को दसवां भाग चाहिए था। वो उसे अपना मानता था और ये दसवां भाग सबसे पहला दसवां भाग होना था। जब पशुओं की बलि चढ़ाई जाए तब याजक का भाग होता था कंधा, गाल और जोज, यानी जबड़ा और गला। ये परमेश्वर ने उसके नाम पर कर दिया था। आगे चलकर हम देखते हैं कि एली के पुत्र लालच में आकर मन चाहा भाग उपासकों से छीन लेते थे। वे जिस भाग की कामना करते थे उसे बलि चढ़ाते समय अपने त्रिशूल से निकाल लेते थे। आपत्ति करने पर वे उपासकों को मंदिर से बाहर निकाल दिया करते थे। उनके इस व्यवहार के कारण लोगों ने मंदिर आकर बलि चढ़ाना बंद कर दिया था। एली अपने बेटों को ऐसा करने से रोकता भी नहीं था। परमेश्वर की सेवा में इस लालच के कारण परमेश्वर ने एली और उसके पुत्रों को कठोर दंड दिया। वे अपने ही लिए सोचते थे कि उन्हें सबसे अच्छी वस्तु मिले। वे अपने स्वार्थ तक ही सीमित थे। वे लोगों के प्रति लापरवाह हो गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें और उनके पिता को भी दंड दिया। तथापि याजक का अपना एक भाग होता था जो उसे मिलना आवश्यक था। इसके साथ उनका पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु तेल और अपनी भेड़ों की पहली बार कतराया गया ऊन भी याजक का भाग था। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रों में से उसी को चुन लिया है कि वो और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। यहां परमेश्वर फिर से उन्हें कहता है कि वे वहां के मूल वासियों के घृणित काम तथा रीति रिवाजों को न अपनाएं, जिन्हें वे वहां से बाहर निकालेंगे। तुझ में से कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भाभी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। व्यवस्था विवरण 18:10-13। सिद्ध बना रहना अर्थात तेरा सारा मन परमेश्वर में लगा रहे। दूसरे शब्दों में तेरे विचारों में परमेश्वर के साथ किसी अन्य देवी देवता का विचार वास न करे। तेरा ध्यान इन अन्य बातों में न बढ़ जाए। एक ऐसा मन जो केवल परमेश्वर की बातों में मगन रहे। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। व्यवस्था विवरण 18:14। ये मसीह यीशु के आगमन की एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। ये तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनाना और ना वो बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। व्यवस्था विवरण 18:15-18 पर। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 3 में पत्रस ने कहा था कि ये संदर्भ मसीह यीशु से संबंधित भविष्यवाणी है। यहूदी मूसा की इस भविष्यवाणी को जानते थे कि उसने कहा था, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से वरन तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। वे ये भी मानते थे कि ये भविष्यवाणी मसीहा के विषय में है जो परमेश्वर की बातें उन्हें सुनाए। यही कारण है कि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा था, क्या तू वो नबी है जिसके लिए मूसा ने कहा था कि तू उसी की सुनना? यूहन्ना ने कहा, नहीं। क्या तू मसीहा है? नहीं। तो फिर तू है कौन? मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं कि प्रभु का मार्ग तैयार करूं। वे आज भी मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो शीघ्र आएगा, परंतु उनका कहना है कि मसीहा मूसा के रूप में आएगा, अर्थात वो परमेश्वर का पुत्र नहीं होगा। आप लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, हम तो मसीहा को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। वो मूसा के सदृश एक मनुष्य होगा। परमेश्वर हमारे ही बीच में से एक मनुष्य को उठाएगा कि वो हमें परमेश्वर का कहा सुनाए। इस प्रकार वे एक मनुष्य की बाट जोते हैं कि वो आकर उनके मंदिर को बनवाए और उन्हें शांति प्रदान करे। जो ही ऐसा मनुष्य उन्हें मिल जाएगा त्यों ही वे उसे मसीहा घोषित कर देंगे। धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भ भी है जो मसीहा को परमेश्वर हमारे साथ है अर्थात इमैनुएल दर्शाते हैं। मत्ती 1:23। देखिए यशया 7:14 में क्या लिखा है, एक कुवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जैसी उनकी आशा वैसा व्यक्ति तो शीघ्र ही आने वाला है। वो पश्चिमी यूरोप से उठेगा, वो इसराइल राष्ट्र के साथ वाचा बांधेगा और उनके लिए मंदिर बनवाएगा। वे उसे अपना मसीहा घोषित कर देंगे। हम ऐसे समय में प्रवेश करने ही वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इसराइल उसे अपना मसीहा घोषित करेगा। यीशु ने कहा था, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यूहन्ना 5:43। ये व्यक्ति 3.5 साल तक तो वो उन्हें भ्रम में रखेगा, परंतु इस बीच जब उसका मंदिर बन जाएगा और वे अपनी दैनिक आराधनाएं और चढ़ावे चढ़ाने लगेंगे, वो वहां आकर उनके महापवित्र स्थान में खड़ा हो जाएगा और अपने आप को मसीह घोषित करेगा तथा अपनी उपासना की आज्ञा देगा। वो उनके दैनिक आराधना और चढ़ावे समाप्त कर देगा। उस समय वो जानेंगे कि उसने उन्हें धोखा दिया है। जो पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं वे तो जॉर्डन देश में पेत्रा नगर को भाग जाएंगे, जहां आने वाले 3.5 वर्षों तक परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। जो वहीं रुके रहेंगे वे इस शासक द्वारा उत्पीड़ित किए जाएंगे। ये बड़ी ही रोचक बात है कि एक रूढ़िवादी यहूदी मसीहा को परमेश्वर का पुत्र नहीं मनुष्य का पुत्र मानते हैं। वो मूसा के रूप में एक मनुष्य होगा जिसे परमेश्वर उन्हीं के बीच में से चुनेगा। वे ऐसा ही मनुष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आकर उन्हें आज की समस्याओं से मुक्ति दिलाए। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराए देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 20 से 22 पर। एक झूठे भविष्यद्वक्ता को पहचानना बड़ा आसान काम है। आपको बस ये देखना है कि उसने जो कहा है वो पूरा होता है या नहीं। यदि नहीं तो उसे झूठा मान लो। परंतु मनुष्य कितना भोला होता है। यहोवा विटनेस के अगुओं ने 3 या 4 बार मसीह के आगमन की तारीखें दी और एक भी सच्ची सिद्ध नहीं हुई। वो नहीं आया, परंतु उन लोगों में बुद्धि ही नहीं है कि वे अपने अगुओं को झूठे भविष्यद्वक्ता माने। ये लोग जो दर दर भटकते हैं, उनसे मुझे सहानुभूति है। वे बड़े निष्ठावान जन हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि मसीही विश्वासी हो तो ऐसे हो। वे परमेश्वर के प्रति अतः श्रद्धा रखते हैं, परंतु उनके अगुए उन्हें मूर्ख बनाते हैं। मैं ये नहीं मान सकता कि उनके द्वारा वचन का अनुचित अर्थ निर्धारण भूल है। वे जानते हुए ऐसा करते हैं कि मनुष्य मूर्ख बनाए जाए। काश ये सच्चे खोजी मसीह यीशु के सत्य को पहचान ले, तो वे मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को पहचान लेंगे और अपने उद्धार के लिए मसीह यीशु में विश्वास रखेंगे, ना कि यहोवा के निमित्त कर्म कांड पर। पत्रस हमें झूठे भविष्यत वक्ताओं की एक और पहचान देता है, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। 2 पत्रस 2:3। आज की भाषा में बातें गढ़कर अर्थात कंप्यूटरीकृत पत्रों द्वारा आपकी भावनाओं से खेलेंगे। मैं इन दिनों आप ही के बारे में सोच रहा था कि आप कैसे होंगे आदि। ऐसे लोग ही झूठे भविष्यद्वक्ता कहलाते हैं। वे आपको अपने लाभ का कारण बनाते हैं। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, परंतु आप कहेंगे, ओह, उन्होंने तो बहुत भला किया है। मान लो मेरे पास कोई आकर कहता है, पास्टर साहब, मेरे पास नौकरी नहीं है और मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ सहायता की आवश्यकता है। मैं उसे खाने का सामान खरीदने के लिए 100 रुपए का नोट देता हूं। मुझे नहीं मालूम कि वो नोट नकली है। वो दुकान से सामान खरीद कर चला जाता है। जब वो दुकानदार वही नोट अपने बिजली के बिल में जमा कर देता है, जब आप बिजली का बिल देने जाते हैं, तब वो नोट मान लो आपके पास फिर से आ जाता है। इस बार आप कमीज खरीदते समय ये नोट वहां दे देते हैं और वो दुकानदार अपने पेट्रोल के लिए उसे दे देता है। जब वहां का मालिक पैसा बैंक में डालता है, तब उसका वो एक नोट लौटा दिया जाता है क्योंकि वो नकली है। अब नकली नोट ने कितना भला किया, भूखे बच्चों को भोजन कराया, बिजली का बिल दिया, कमीज पहनाई, पेट्रोल भरवाया, तो बैंक उसे अच्छा क्यों नहीं कहती है, क्योंकि वो अंततः नकली नोट है। अतः भलाई की चर्चा करना उचित तर्क नहीं है। यही तर्क लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं और झूठे धर्मतंत्र के पक्ष में देते हैं। निस्संदेह उन्होंने बहुत भलाई की, परंतु वे है तो नकली। यही कारण है कि परमेश्वर उनके विरुद्ध चेतावनी देता है। यदि कोई परमेश्वर के नाम में अपनी इच्छाओं को और अपने विचारों को कहे, परमेश्वर कहता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं देता है। ये कंप्यूटरकृत पत्र कलीसिया के लिए आप श्राप है। मेरे पास भी ऐसे अनेक पत्र आते हैं। मैं नहीं जानता किसने मेरा नाम उनकी डाक सूची पर लिख दिया है। ये लोग एक दूसरे से डाक सूचियां खरीदते रहते हैं। आपका दान देने पर वे आपके द्वारा भेजे गए पैसों में से अपना कमीशन ले लेते हैं। मुझे एक दिन ऐसा ही एक पत्र श्री पॉपऑफ से प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने एक भविष्यवाणी लिखी। यहोवा यूं कहता है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं और मैं तुझे आशीष दूंगा, और आशीषों को बांटो आदि व्यर्थ की बातें। मैंने उसे पत्र का उत्तर में लिखा, यहोवा यूं कहता है, मैं झूठे भविष्यत वक्ताओं के विरुद्ध हूं जो मेरे नाम में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं यहोवा यूं कहता है, जबकि मैंने कहा ही नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने जो कहा वो परमेश्वर का कहना ही था, क्योंकि ये उसके वचन का संदर्भ था। मैंने पत्र में ये भी जोड़ दिया, आपका नाम पॉप ऑफ है, परंतु जिस प्रकार शौल का नाम बदलकर पौलुस हुआ, उसी प्रकार आपका नाम भी बदलकर लुटेरा हो जाना चाहिए। उसे ये भी लिखा, जो परमेश्वर के नाम में नहीं था, तेरा नाम पॉप ऑफ है, जिस प्रकार शौल पौलुस हुआ, उसी प्रकार तेरा भी नाम बदलकर रिप ऑफ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नाम अति शीघ्र उसकी सूची से हट जाएगा। ऐसे अनगिनत झूठे प्रचारक हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िए बने घूम रहे हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होता जो उसके नाम में वे बातें कहें जो परमेश्वर ने कभी कही ही नहीं। ऐसे लोगों को मार डालने की आज्ञा थी।